الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں سوشل میڈیا موبائل فون انٹرنیٹ اس کے زندگی میں نقصانات کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی واقعی انصاف کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے اطراف نگاہ دوڑائے تو اسے احساس ہوگا کہ واقعی ہم بہت حد تک اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے متاثر ہو رہے ہیں، عبادات سے لے کے خاندانی زندگی سے لے کے، اور بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں اس سے متعلق پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک اور حصہ ہے جو زندگی کا بہت بڑی اور بری طرح سے متاثر ہوا ہے، وہ ہے ہماری سوچ اور ہمارا مزاج، جو کہ ہماری شخصیت ہے۔ اس کے ذریعے سے ذہنی طور پر سوچ کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر زوال اور بگاڑ آ رہا ہے اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سوشل میڈیا کے سرے سے مخالف ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ درس نشر ہو رہا ہے، یہ درس، یہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں تک جا رہا ہے، تو ہم سرے سے اس کے مخالف نہیں ہیں۔ نہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم میں سے اس دور میں کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہو کہ چھوڑ دو اس کو، بلکہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ جہاں باطل کی دعوت چل رہی ہے، وہیں حق کی دعوت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بزنس کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مصیبت وہاں شروع ہوتی ہے جب ہم اپنا دائرہ پھیلانگنے لگتے ہیں اور اس کی جائز حدود کو کراس کر کے ہم غلط چیزوں کو اس کے ذریعے کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا اتنا استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جو ہماری باقی چیزوں کو، زندگی کی باقی چیزوں کو متاثر کرنے لگے، اس میں بگاڑ پیدا ہونے لگے، امبیلنس اس میں پیدا ہونے لگے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، جائز حدود کو پھلانگ کے حرام میں جانا، یہ بھی غلط، اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں دوسری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے اس میں مشغول ہوں، یہ بھی غلط۔ تو یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہم کو بچتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے، نہ حرام اس پر کرنا ہے اور نہ حد سے زیادہ اس میں مشغول ہونا ہے، باقی چیزوں کو خراب کر کے اس میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر، سائیکولوجیکلی، اس کے کیا ایول ایفیکٹس ہیں، ذہنی طور پر اس کے برے اثرات ہماری شخصیت پر کیا پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ریاکاری اور خود نمائی۔ ریاکاری ایک بری چیز ہے، دکھاوا، ایک انسان کا دکھاوا کرنا، خاص کر کے دینی معاملات میں۔ سوشل میڈیا ہمارے ذہن کو ایسا بناتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، چاہے ہم حج اور عمرہ کر رہے ہوں خاص طور سے، یا ہم خدمت خلق کر رہے ہوں، یا ہم دین کی دعوت دے رہے ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، اس اعتبار سے کہ پھر لوگ اس کو لائک کریں، کیونکہ اس میں جو طریقہ ہے وہی ہے کہ آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور اس پر کمنٹ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی تعریفی کلمات یا لوگوں کے لائکس، پسند جمع کرنے کے لیے آدمی اپنی نیکیاں بیچنے لگتا ہے، دکھاوے کے طور پر کہ لوگ اس کو دیکھیں، اور دھیرے دھیرے انسان کے ذہن سے یہ تصور نکل جاتا ہے کہ نیکیاں بھی ویسے ہی چھپانے کی چیز ہیں جیسے آدمی گناہوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا انسان کا ذہن ایسا بناتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں لوگوں کے سامنے لائے، تاکہ لوگ اس کو پسند کریں، اور اس پسند کی روشنی میں، اس پسند، لائکس اور کمنٹس کے آئینے میں وہ اپنی اوقات طے کرتا ہے، سبسکرائبر، فالوورز کی روشنی میں ان کی گنتی کے مطابق اپنا بہاؤ طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ انسان نیکیوں کی نمائش کرے۔ سلف کی زندگی میں نیکیوں کا چھپانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے عام طور سے مزاج بن گیا ہے کہ سبھی تو اپنی نیکیاں بتاتے ہیں، اس میں کیا چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس وقت مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ فقال الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ آپ نے کہا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ تم پر کس چیز کا مجھے ڈر ہے؟ تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرہ، دجال سے بھی زیادہ مجھے تم پر کس چیز کا خطرہ اور خوف اور اندیشہ ہے؟ فقلنا یا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے۔ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک، سیکرٹ شرک۔ ان یقوم الرجل، کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل۔ اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں اور پھر جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور اچھا بنائیں کسی کے دیکھنے کی وجہ سے۔ دنیا مجھے دیکھے اس لیے میں نیکی کو اچھا بناؤں، یہ کیا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو اللہ والی پڑھ رہا ہے، وہ نماز نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، عبادت ہے جو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں مقصود کس کی تعریف ہے، مقام کس کے پاس بنانا چاہ رہا ہے؟ دیکھنے والے کی طرف، اس کا دھیان دیکھنے والے کی طرف ہے، تعریف اس کی چاہتا ہے اور اس کے دل میں مقام بنانا چاہتا ہے کہ اس کے ہاں میری کوئی جگہ ہو، جبکہ عبادت کے ذریعے کس کے ہاں جگہ بننی چاہیے؟ اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے عمل۔ آپ آج دیکھیے، آدمی عمرے میں جا رہا ہے، سیلفی اسٹک لے کے جا رہا ہے، ہاں ایئرپورٹ پہ سارے اس کے کیمرہ اور سیلفی اسٹک ساری چیزوں کے ساتھ، موبائل فون کے ساتھ، اس کے ساتھ سب وہ بھی آ رہا ہے۔ کیوں لے کے جا رہا ہے یہ؟ ارے بھائی، ہم کو ریکارڈنگ کرنا ہے اور اس کو ہم کو کیا کرنا ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپلوڈ کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور پسند کریں، لائکس کریں۔ اور آدمی پھر دیکھ رہا ہے، دیکھو ہم نے فیس بک پر اپنا ویڈیو ڈالا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور دیکھو اتنے گھنٹے میں اتنے لائکس ہیں، اتنے لوگوں نے کامنٹس کیے ہمارا، دیکھو ہاں عمرہ وائرل ہو گیا، پوری فیملی کے ساتھ ہم نے عمرہ کیا اور بچے اور سب سب اس میں ہیں اور ہم کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں اور یہ وائرل ہو گیا ہمارا۔ نیکی ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ فتنہ جو پیدا ہوا اور لوگوں میں احساس ہی نہیں رہا کہ آدمی ایک عبادت اللہ کی کر رہا ہے، کہ آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے اور کسی آدمی کو موبائل فون دے اور کہے کہ میرا فوٹو نکالو، اور یہ دعا کا فوٹو وہ رکھے گا اپنے پاس سنبھال کے کہ مدینہ کے اندر میں نے یا مکہ کے اندر میں نے حرم کے آگے میں نے اس طرح سے دعا کی تھی۔ وہ دعا نہیں ہے، وہ فوٹو کے لیے دعا ہے، وہ نقلی دعا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک فوٹو میرا بن جائے۔ کیا ہوگا فوٹو سے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور کس کو دکھانا ہے تجھ کو؟ اور کس کو دکھانا ہے؟ میری نیکی اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ مجبوری میں وہ نیکیاں جو فرائض ہیں ان کو دکھانی پڑیں گی کیونکہ مسجد میں آنا ہے، لیکن جو ایسی نیکیاں ہیں جتنا چھپا سکتے ہیں اس کو کیوں نہ چھپائیں ہم اس کو، اور کبھی ظاہر کرنی بھی پڑے تو اس اعتبار سے کہ لوگ اس سے سیکھیں۔ کہ آدمی بچے کو، بھائی کو، لوگوں کو، ایک معلم ہے نماز پڑھ کے دکھا، دیکھو میں ایسے پڑھ رہا ہوں نا، تم بھی ایسی پڑھنا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے، شہرت کے لیے ہم اپنی نیکیوں کو بیچ کے لائکس کی بھیک جمع کریں؟ کٹورے میں، پیالے میں لاؤ، ذرا لائک کرو اس کو، 500 लाइक हो गए, 100 लाइक्स हो गए और दिन भर गिनता रहे, जैसे फ़कीर अपनी जो है चवन्नी और रुपए और इसके जो है सिक्के गिनता रहे दिन भर, क्या हमारी नेकियां फॉर सेल हैं? और बदले में क्या है? लाइक्स। लाइक्स करेंसी है इस वक्त की, और उस करेंसी के बदले में आदमी अपनी नेकियां बेचे कि अपनी नेकियों का इजहार दुनिया के सामने करे ताकि लोग उसको पसंद करें। मुसलमान ऐसा नहीं होता है। असलाफ की ज़िंदगी देखें किसी दिन, इंशाल्लाह वो भी हम जिक्र करेंगे और पूरा कोर्स ही करेंगे इंशाल्लाह इखलास पर, कि उनकी वफात के बाद जब फुकरा महरूम हो जाते तब मालूम पड़ता था कि ये लोग थे जो रात में उनके सोए होते थे और उनके पास खाने की चीज़ें और चीज़ें रख के चले जाते थे, कि इनकी वफात जिस दिन हुई उस दिन से आना बंद हो गया है। तो मालूम पड़ा कि अच्छा ये देते थे क्या, हम लोग सोए रहते थे और हमारे सिराने रख के चले जाते थे। अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह वगैरह के बारे में आता है कि उनके गुस्ल देते वक्त मालूम पड़ा कि उनकी पीठ पर जो निशान थे, रात में खाने का घड़ा उठा के चलते थे चुपके और फिर उसमें से खाना गरीबों को बांटते थे, मालूम भी नहीं पड़ता था कि किसने किया है। जब गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया तो पीठ के निशान से मालूम पड़ा कि ये जो निशान है ये पीठ पर इस तरह से घड़ा उठाने की वजह से बने हैं। तो ये हालात उनके थे नेके, और आज आदमी गरीबों में बांट रहा है और कोई एक फ़ोटो छोड़ता नहीं है। हमको दिखाना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है, ठीक है आप दिखाना पड़ता है ना तो आप अपने पास रखो ना उसको, कानूनी तौर पर आपको दिखाना पड़ता है, किसी को जवाब देना पड़ता है, किसी ने आपको पैसा दिया है तो उसको दिखाना पड़ता है, या आपको पुलिस पूछेगी उसको दिखाना पड़ता है, जबकि पुलिस क्यों पूछेगी भाई, उनको काम नहीं है क्या? लेकिन आदमी क्या करता है, वो सारे फोटो उठा के फेसबुक पर और यूट्यूब पर और यहाँ वहाँ डालता है, क्यों, क्या ज़रूरत है? क्या इससे पहले लोग खिदमत खल्क नहीं करते थे? क्या सलफ नहीं करते थे? सलफ की दूर की बात है, इस दौर के हमसे पहले कुछ लोग, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, जब कैमरा नहीं यूज़ होता था ज़्यादा, क्या खिदमत खल्क नहीं होता था? तब लोग तो फ़ोटो नहीं निकालते थे, तब डॉक्यूमेंटेशन क्या कैसा मतलब होता था? क्या ज़रूरी है कि इस तरह से किया जाए? और यानी क्यों हम लोगों को बेइज्जत करें? ये गरीब औरत है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब बेचारी उसको आप खड़े करके आप उसको दे रहे हैं और फ़ोटो निकालो, फ़ोटो निकाल रहे हैं, वो औरत आपकी एक थैली चावल की वजह से, 5 किलो की वजह से पूरे गांव में बेइज्जत हो रही, पूरा फ़ोटो उसका फेसबुक के ऊपर आ रहा है, वो बेचारी गरीब औरत है, बोलती हमको चाहिए ही नहीं भाई ऐसा तुम्हारा, हम भूखे मर जाएंगे, हम लोग पूरे गांव में बेइज्जत हो कि हम 5 किलो चावल तुम्हारे ले रहे हैं? शर्म से बाज लोग लेते भी नहीं, क्यों क्यों हम करें? कहीं ना कहीं इसमें यानी ठीक है उनको ज़रूरत पड़ती होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखें अपने पास, छुपा के रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी निकालो ना। तुम सारे गांव में क्यों बता रहे हो कि तुमने किसको किसको दिया है? गुरबा फ़करा सारे की तस्वीर लाएं कि फ़ोटो दें। अच्छा बाज़ औक़ात तो उसमें मतलब यानी जवान औरतें होती हैं, वो पर्दे वाली हैं, आप उसको पर्दा निकाल के लेने लगाएंगे, कैसे मालूम पड़ेगा इसको ही दिया आपने? तो बहुत बड़ा मसला ये है, चाहे वो यानी इबादात का मामला हो या खिदमत खल्क का मामला हो, इसमें अक्सर ये मामला होता है कि इसमें दिखावे की सूरतें पैदा होती हैं। ठीक है हम कहते हैं कि सब दिखावा नहीं करते हैं, कुछ लोग वाकई डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखते हैं, यकीनन ऐसा करते होंगे, उम्मीद हमारा उसने जन उनके साथ में है, लेकिन फिर दूसरों की इज्जत भी तो उससे जुड़ी हुई है, आप क्यों उनकी इज्जत सारे गाँव में बता रहे हो कि ये लोग हमको देते हैं और ये हमारे देने से खाते हैं? कोई आदमी पसंद नहीं करता है कि वो मैं लोगों के सामने आ जाऊं कि मैं मोहताज हूं और लोगों का ले रहा हूं, बेचारा घर में बैठा था, आप उसको बुलाए, बुला के आपने दिया और फोटो निकाल के पूरे गांव में दिए, वो तो आया नहीं था ना आपके पास मांगने के लिए, तो आप क्यों उसका सारे गांव में डाले? आप अपने फाइल में उसको रखते, कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप निकाल के बताते, लेकिन आपने क्या किया उसको पूरे गाँव में आपने उसको प्रचार कर दिया, उसके रिश्तेदार फ़ोन कर रहे उसको, क्या रहे तू चंदे का लेता क्या, सब फ़कीरों का ज़कात का खाता, तो हमको बोल देता ना हम दे देते। सोचिए लोगों को शर्मिंदा ना करें, अपनी नेकियों को नीलाम ना करें, अपनी नेकियों के ज़रिए से लोगों की सस्ती शोहरत खरीदें नहीं। तो ये पहलू जो है इसके अंदर है, जो नेकियां ज़ाहिर करना। महमूद इब्न लबीद कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک، چھوٹا شرک، اسے اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے لیکن شرک تو ہے، چھوٹا شرک ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ قال الریا، دکھاوا کرنا، نیکی کا دکھاوا کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جز الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیکی کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ان سے لو، مجھ سے کیوں لے رہے؟ مطلب کیا ہے کہ تم جن کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے تھے نا، جاؤ اور انہی سے بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے بدلہ نہیں ہے۔ اتنا کر کے ملا کیا؟ دکھاوا نیکی کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایسے انسان کو مذموم اور مجرم بنا دیتا ہے۔ نیکیوں کو چھپائیں، کچھ نہیں ہوتا، صرف دل میں تھوڑی سی کسک باقی رہ جاتی ہے کہ وہ شہرت نہیں مل رہی، اپنے کمپیٹیٹرز کا سارا آ رہا ہو انٹرنیٹ پہ، ہمارا نہیں آ رہا۔ بعض اوقات آرگنائزیشنس ہوتی ہیں کہ ہمارے کمپٹیشن میں جو لوگ ہیں وہ لوگ چھائے ہوئے انٹرنیٹ پہ، ہم لوگ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھپانا بولے تو بے چینی ہوتی ہے، ویسے جیسے کسی عورت کو معلوم پڑوس میں کیا ہو رہا اور وہ بتانے کے لیے تڑپ رہی ہو لوگوں کو، سہیلیوں کو، ایسی کہ کیا چل رہا ان کا اس کو معلوم ہے، اور پوری سہیلیوں کو، گروپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس کو بے چینی ہوتی رہتی ہے، کسی طرح سے بتا دوں تو میرا مطلب پیٹ خالی ہو جائے۔ ویسی بعض اوقات مردوں میں بھی رہتا ہے کہ وہ خدمت کے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں پھر سارے گاؤں میں بیان کرتے ہیں، مت کیجیے، ایک آدھ بار نہیں، ٹھیک ہے آپ 10 بار کر رہے ہیں نا، ایک بار نہیں بھی کر کے دیکھو نا، ہاں ایک بار نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں، ہر چیز کریں گے، کیونکہ اس میں ایک ہوڑ لگی ہوتی ہے شہرت کی، نہیں کریں گے، نہیں کریں۔ ہاں آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی کو کچھ ضرورت ہو وہ فلاں جگہ آئے، اس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں تو آ سکتے ہیں، جو بھی لینا چاہے وہ لے کر جائے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اوکے، یہ اعلان ہے، تعاون کا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر ان کا فوٹو سیشن نہیں کریں، نہیں کریں۔ اس میں غریبوں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اتنا مزاج بن جاتا ہے، ہر چیز میں فوٹو، ہر چیز میں فوٹو، ریکارڈ کے نام پہ فوٹو لینے کا ریکارڈ بریک ہو جاتا ہے، اتنے فوٹو نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاص نیکیوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور ریاکاری نیکیوں کی بربادی کا یقینی سبب ہے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ورنہ اتنا سب کچھ کیا کرایا، قیامت کے دن جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، فائل میں تو پورے ریکارڈ تھے، سارا فیس بک پہ ریکارڈ تھا، اللہ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیکیوں کے اس میں خانے میں ہے ہی نہیں، تو نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا، سب جگہ ریکارڈ ہے تیرا، اللہ کے پاس نہیں تو ناکام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، وہ نیکی کے تیرے پڑھنے میں تلنا چاہیے، وہ نیکی کے طور پر اللہ کے ہاں لکھا گیا ہو تو فائدہ، ورنہ پوری دنیا میں نیکی کے طور پر لکھا گیا، اللہ کے ہاں نیکی کے طور پر لکھا نہیں گیا، تو نے کیا کیا، کیا کمایا؟ تو خالی ہاتھ گیا، فقیر بن کے گیا، یہاں پہ وہاں مانگے گا لوگوں سے؟ وہاں نہیں مانگ، کیونکہ اللہ کے لیے تو نے نہیں کیا، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں، دکھاوے سے ہم بچیں۔ سوشل میڈیا کا جو سٹرکچر ہے، لائکس اور کمنٹس اور شو آف، اس میں انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کو شیئر کرنا چاہیے اپنی حالات، اپنی کام، اپنی نیکیاں، یہ سارا دکھاوے کی زندگی انسان جینے والا بن جاتا ہے، خاص کر کے نیکیوں کے باب میں۔ نمبر 2، احساس محرومی اور غم اور ناشکری۔ سوشل میڈیا کا سٹرکچر کیسا ہے، فرینڈس ہیں، سارے فرینڈس کے فیڈ اس کو آتے رہتے ہیں، فیس بک خاص طور سے یا انسٹاگرام، وہ ہالینڈ جا رہا، وہ فنلینڈ جا رہا، وہ چائنا جا رہا، ہاں وہ سعودی گیا، یہ دبئی گیا، اب سارے لوگوں کا زندگی دیکھ رہا، یا ये फलानी होटल में खा रहा और वो फलाना चीज़ खा रहा है, फलाने ने ये मोबाइल ख़रीदा, फलाने ने ये कपड़े लिया, फलाने की ये जूते हैं, सारे लोगों की ज़िंदगियां आपके सामने आती हैं। अब आदमी अच्छा फ़ोटो डालने वाला क्या करता, मेरा मूड ख़राब है एक फ़ोटो निकाल रहे मेरा, ऐसा करता नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी के वो मोमेंट शेयर करता है जो एकदम हाइलाइट्स हो, वो कैसे हो एकदम ज़बरदस्त, तो मुस्कुराएगा, फ़ोटो निकालेगा, खाना है अच्छा उसको अच्छा, और मतलब अच्छी बात उसमें ये भी है कि सोशल मीडिया में दाल पतली कैसी भी हो एकदम पीली फीकी रख उसको पीला बनाने आता है, एकदम क्या रौनक दिख रही दाल में। अच्छा ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं कि आप किसी का मुंह रोती सूरत हो तो उसको आप मुस्कुराने वाला भी बना सकते हैं, एडोबी उसमें ऐसा कर सकते हैं आपके उसको उसकी स्माइल इंप्रूव कर सकते हैं आप, और आपके चेहरे के ऊपर अगर कहीं दाग धब्बे हैं उनको आप आपको यानी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेशन आते हुए सारे धब्बे गायब करते एकदम पुरनूर चेहरा दिख रहा आप। अब वो सारे खूबसूरत फ़ोटो और वो सारे खुशी के लम्हात, घर के अंदर खुश हैं सब और सब यूं कर रहे एकदम हाँ सब यूं कर रहे सारे लोग फैमिली के लोग मिलके, और उसके बाद झगड़ा हुआ वो कोई फोटो नहीं डालता। अब इसका उसका 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 फोटो सब देखने के बाद आदमी को अब ये पलंग पे बैठा हुआ लुंगी पहन के और बीवी सर पकड़ के बैठी जुकाम से टिश्यू से पोंछ रही नाक, अभी बोलते मेरा घर कैसा है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरे फलाने दोस्त की ज़िंदगी में, मेरा फलाना 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 इन सब की ज़िंदगी में ये सब इन्जॉय कर और मैं मेरी घर में ज़िंदगी देखो कैसी है, बच्चे रो रहे इधर हाँ, बीवी परेशान उधर है इंतज़ार में कि कभी बाहर जाए तो वो फ्री हो जाए थोड़ा, जल्लाद घर से निकले और कहीं जाने को उसका मूड नहीं है। तो अब आदमी अपनी ज़िंदगी में देखता है कि मेरी ज़िंदगी फीकी है, लेकिन मीडिया में सब क्या है, सबकी ज़िंदगी के एकदम अच्छे लम्हात दिखाई दे रहे, उसको एक साइकोलॉजिकली उसके जहन में ये बात आती है कि सब खुशहाल हैं मैं गमगीन हूँ, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके प्रॉब्लम्स भी हैं खुशियाँ भी हैं, लेकिन बाकी सारे लोग शेयर क्या कर रहे हैं उसके अंदर, खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, जितना फ्रेंड सर्कल है जितने फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं वाकई फ्रेंड्स नहीं रहते, वो खाली जो उसको फ्रेंड एक्टिव कर दे तो फ्रेंड हो गया, उन वाकई फ्रेंड है भी नहीं, वो रहता श्रीलंका में ना मिला ना कुछ, खाली उसने बोला फ्रेंड बनते क्या मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है अब तो ये फिर फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड इस तरह से भी फ्रेंड रहते हैं, कभी मिले नहीं कभी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन सब की ज़िंदगी की खुशी के लम्हात देख कर, क्योंकि कौन बताएगा मेरे घर में पिटाई मेरी हुई बीवी के हाथ से, तो वो सारा हम बुरा शेयर नहीं करते हैं अच्छा शेयर करते हैं, लेकिन ये देखता है कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं मेरी ज़िंदगी में परेशानियां हैं लेकिन बाकी सब लोग खुश हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, इसको कमी का एहसास होगा। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जो वेस्ट में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलता चला जा रहा है, कमी का एहसास, दुख का एहसास, मेरे पास कम है मेरे पास कम है, सब खुश है मैं दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी फीकी फीकी है सबकी मीठी मीठी है, मैं ठीक नहीं हूँ सब खुश हैं सब आपके पास सब कुछ है मेरे पास नहीं है, ये जो हालत पैदा हो रही है ये भी एक मसला है जिसकी वजह से इंसान इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, दुखी हो रहा है आदमी। आउन इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं साहिबतुल अग्निया फलम और अहदन अक्सर हम मिन्नी, मैं जब मालदारों के साथ रहने लगा थोड़ा वक्त गुजारा उनके साथ मैंने, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है, फिक्र में नहीं है टेंशन में नहीं है, अरा दाबतन खैरम मिन दाबती व सौबन खैरम मिन सौबी, कि मैं देखता था कि उसके पास मेरे से अच्छी सवारी है उसके पास मेरे से अच्छे कपड़े हैं, जब ये हाल देखता था मैं मालदारों में रह के तो मुझे अपनी कमी का एहसास होता था और मुझको फिक्र फिक्र अपने बारे में, दुख दुख मुझको अपने बारे में महसूस होता था। कहने लगे وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ, जब मैंने मालदारों को छोड़ा और गरीब फकीर लोगों में रहने लगा तो ये सारी मेरी तकलीफ चली गई। क्यों? इसलिए कि अब मैं देखने लगा इनसे अच्छा हाल तो मेरा है, इनसे अच्छा हाल मेरा है। तो जब आप दूसरों की ज़िंदगी के अच्छे मोमेंट्स देखो और अपने घर के हालात देखो तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या लगेगा? आप महरूम हो। महरूमी खुशी लाती है कि नहीं? एक आदमी के पास मेरे पर कुछ भी नहीं हो खुश रहता हो, महरूमी दुख पैदा करती है, शिकायत पैदा करती है, क्या अल्लाह सबको दे रहा हूँ मुझको नहीं दे रहा। मुँह से नहीं बोलता, दिल से तो बोलता। उसको ऐसा लगता है कि अल्लाह सबको खुशी के हालात में रखा है जबकि ये फासिक है, ये फासिक है, ये सही ढंग से नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं सब करके भी अल्लाह ने मेरे को नहीं दिया है। तो आदमी के दिल में क्या पैदा होती है? अल्लाह के लिए भी शिकायत। तो सोशल मीडिया में लोगों की अच्छी ज़िंदगी देखकर इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होती है। यूनुस इब्ने उबैद के बारे में सईद इब्ने आमिर कहते हैं कि जा रजुल इला यूनुस इब्ने उबैद, यूनुस इब्ने उबैद के पास एक शख्स आया, यशकु दीक हालिही, ज़िंदगी की तंगियों का जिक्र किया उनके सामने, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, बहुत तंगी चल रही, मेरी हालात मेरे बहुत क्या हैं, ख़राब हैं। फ़क़ाल लहु यूनुस अयसुर्रुका बिबसरिका हादा अल्लज़ी तुबसिरु बिही मिअता अल्फ दिरहम, ये जो आँख है ना तेरे पास इससे तू देखता है ना, हाँ, तो अगर एक मिअता अल्फ 100,000 यानी 1,00,000 दिरहम के बदले तेरी आँख ले ली जाए, इस आँख के बदले ना हो तेरे पास आँख और एक दिरहम 1,00,000 दिरहम तुझको मिल जाए, चलेगा? खुश होगा तू? قال الرجل لا ना, क्या बोला उसने? नहीं। قال في يديك 100,000 درهم, हाथ के बदले दोनों हाथ ना हो तुझको, दोनों हाथ के बगैर तो पैदा हो जाए लेकिन तेरे पास क्या हो? 1,00,000 दिरहम हो, चलेगा? قال الرجل لا, قال في رجليك, दोनों पांव ना हो तुझको और उसके बदले तुझको 1,00,000 दिरहम मिल जाए, قال الرجل لا, उसने कहा नहीं। قال فذكر فذكره نعم الله عليه, उन्होंने कई नेमतें अल्लाह ताला की बयान की, ये 1,00,000 दिरहम चलेगा, इसके बदले इसके बदले 1,00,000 दिरहम चलेगा, वो हर जवाब में क्या कहता था? नहीं। قال يونس ارى عندك من بين مئات الاف وانت تشكو الحاجه, तेरे पास लाखों के नेमतें हैं, लाखों की नेमतें हैं, आँख कान नाक जुबान हाँ हाथ पांव, ये सारी नेमतें जो लाखों और करोड़ों में जाती हैं, इतना तेरे पास है और फिर भी तू बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अपनी तंगदस्ती की शिकायत करता है, ये सारी करोड़ों की चीज़ें तेरे पास हैं और तू शिकायत कर रहा है। इसको इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान में रिवायत किया है। इसका नतीजा क्या है, क्या सबक है इसमें? सबक ये है कि इंसान का प्रॉब्लम ये है कि क्या है पे ध्यान कम होता है, क्या नहीं है पे ध्यान ज़्यादा होता है। हमारे दुख का बेसिक रीज़न क्या है? हमारे पास जो कुछ है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता, जो नहीं है उस पे ध्यान ज़्यादा रहता। एक प्रोफेसर एक बड़ी शीट लेके आया क्लासरूम में और उसने पूरे उसको चिपकाया बोर्ड के ऊपर और एक मार्कर लिया और ब्लैक मार्कर और उस शीट के ऊपर उसने डॉट लगाया, क्या दिख रहा? तो सब ने क्या बोले? उसने बोला ये शीट नहीं दिख रही, समझ में आई बात? तुमको इतनी बड़ी वाइट शीट नहीं दिखाई दी, मेरे सवाल पे तुमने क्या बोला? डॉट। तो तुमको वो एक ब्लैक डॉट दिखा लेकिन वाइट शीट, तुम वो भी तो बोल सकते ना, क्या दिख रहा का जवाब बोल सकते, एक वाइट शीट है उस पर एक डॉट है लेकिन बोलने वालों ने क्या बोले? डॉट। तो इंसान वो डॉट को देखता है, शीट को देखता नहीं। हमारी ज़िंदगी में कितनी नेमतें अल्लाह की हैं, क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने, और मान लीजिए कुछ नहीं भी दिया, दीन दिया ना, दीन नहीं देखे अल्लाह सबको देता चलता, हमेशा की जहन्नम चाहिए। آدمی بولتا کیا دیا اللہ نے، اللہ کے بندے دین دیا، مسلمان گھر میں پیدا کے شکر مان اللہ کا، ایسا نبی دیا، ایسی کتاب دی، تجھ کو عزت دی اللہ نے اسلام کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کے اور تجھ کو چاہیے کیا؟ ہمارے نبی کے گھر میں کیا تھا؟ بہت بڑے خزانے تھے کیا؟ سوچ، وہ شکر کرتے تھے اللہ کا نہ ہو کے، اور تیرے پاس اتنا رہے کہ تو شکایت کرتا ہے اللہ کی؟ تین وقت کا کھانا تیرے پاس ہے، کپڑے کئی لباس جوڑے تیرے پاس ہیں، جوتوں کے کئی تیرے پاس، چپل کتنی جوڑے تیرے پاس ہیں، کئی کمرے تیرے گھر میں ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک کمرہ گھر میں، اور اسی میں آپ رہ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے سجدے کرنے کے لیے، ایسے گھر میں جی رہے جس میں مہینوں مہینوں چراغ نہیں، یہ جلتا نہیں تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پی کر وہ لوگ زندگی گزار رہے، اور کبھی شکایت کی اللہ کی؟ اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے نبی بول رہے ہیں، اور ہم شرم سے بھی مطلب سر جھکتا نہیں ہمارا، اتنی شکایت اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ شکایت، ناشکری اور غم، محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے۔ یہ صرف اسلامی اعتبار سے نہیں، آپ دیکھیے ریسرچ، آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے، ڈپریشن اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، جہاں آپ کمپیرزن سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اوپر والوں کو دیکھے، دکھی ہونا واجبی ہے اس کے لیے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو کمی کا احساس اس کو ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں دنیا میں۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تمہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، تم ان میں اللہ کی ناشکری، ناقدری نہ کرنے لگو، ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جو محروم ہے، پریشان ہے، ان کے پاس کم ہے، ان کو دیکھو، تم کو شکر لگے گا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے بہت کچھ۔ اگر آدمی دیکھے کہ میرے پاس اچھی چپل نہیں ہے، وہ اس کو دیکھے جس کے پاس چپل پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہے، تو تیرے پاس چپل نہیں ہے ٹھیک سے، اس کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، تو چپل پہنے گا کہاں سے؟ اللہ نے پاؤں تو دیے کم سے کم تجھ کو، آج نہیں تو کل چپل اچھی ملے گی تجھ کو، لیکن پاؤں کہاں سے لگائے گا، پاؤں کہاں سے لائے گا تو؟ تو اللہ نے کیا دیا ہے، چونکہ وہ فری میں ملا ہے، بغیر ایفرٹس کے ملا ہے، اس کی قدر رہتی نہیں۔ سوشل میڈیا ہماری مینٹالٹی ایسی بناتا ہے، دوسروں کے پاس بہت کچھ ہے، تیرے پاس نہیں ہے، دوسرے آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو کہاں جا رہا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اے نبی، دنیا کی نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے جو کچھ ہم نے ان کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں دیکھنا مت، ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھنا مت، طلب کی نگاہ کے ساتھ اس کو مت دیکھنا، یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو آزمائیں، ان کے امتحان کے طور پر دیا ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ آزمائش۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے، جو جنت میں ہوگا۔ کہ آدمی اگر دنیا میں اس کو نہیں بھی ملا ہے، اس کے دل میں بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں نہیں ملا کوئی بات نہیں، آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، تو اللہ سے امید کدھر کی باندھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، رونے لگے، کہا عمر کیوں روتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول قیصر اور کسرا باغوں میں، نہروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ کے گھر کا حال یہ ہے؟ کہا اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ مسلمان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم کو نہیں ملا کوئی بات نہیں، ہم آخرت میں لیں گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرومی پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آخرت سے اپنے دل کو جوڑ کے اپنے کو آپ کو اطمینان دیا، اور اطمینان حضرت عمر کو دلایا، دنیا میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں لیں گے ہم لوگ۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، सोशल मीडिया इंसान का जहन उसमें ख़राबी पैदा करता है और उसका ध्यान मिले हुए की बजाय खोए हुए पर या महरूमी पर लगा देता है और उससे वो दुखी होता है, खुशहाली ख़त्म हो जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं वो लोग। नंबर 3, हसद। ज़हनी प्रॉब्लम क्या क्या आता है उसमें कि जितने लोग हैं सबको मिल रहा, मुझको नहीं मिल रहा, मेरे पास नहीं है। वो दावतों में खा रहा है, वो पिकनिक पे जा रहा है, उसकी कंपनी में उसकी तरक्की हो गई, उसको इनाम मिल रहा है, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पास हो गया, सारा उसके ऊपर आदमी शेयर करता है और ये सब को देखता है, इंसान की फितरत है। फिर वो क्या होता है, उसको उसके हसद पैदा होता है, सब आगे जा रहे मैं पीछे रह रहा, सबकी ज़िंदगी में एक एक चीज़ें आ रही हैं और मेरे पास नहीं है, तो उसके अंदर उनके लिए दिल में जलन पैदा होती है, वो खुश नहीं होता उसके ऊपर, वो खुश नहीं होता उसके ऊपर उन नेमतों पर, उसके दिल में कहीं ना कहीं एहसास पैदा होता है कि इनकी नेमतें छिन जाएं तो कितना अच्छा, ये भी मेरे साथ उसी लेवल पर रहे हैं, आगे ना जाएं, हसद पैदा होता है उसके अंदर, और हसद से बहुत बड़ा फसाद पैदा होता है। हसद के नतीजे में साजिशें पैदा होती हैं, तोहमतें पैदा होती हैं, धोखे पैदा होते हैं, और उसके नतीजे में यानी इंसान का किरदार ही बिगड़ के रह जाता है, वो खुशी का इजहार भी नहीं कर पाता है, वो खुशी का इजहार भी सही ढंग से कर पाता है नहीं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वत्तहकीक अन الحسد والبغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود, किसी के अच्छे हाल को देखकर दिल में उसके लिए नफरत और नापसंदीदगी को महसूस करना, इसका नाम हसद है। किसी की तरक्की को देख के खुश नहीं होना, अच्छा नहीं लग रहा ये तरक्की कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा इसका अच्छा हाल है, तो दिल में क्या करना, उसके लिए नापसंदीदगी पैदा होना, नहीं हुआ तो कितना अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो मैंने नई दुकान खोला देखो, और एकदम रौनक वाली, वो भी थोड़ा फोटोशॉप करके डाला दुकान को, खूबसूरत दिख, लाइट 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 दिख रही, उसके अंदर अच्छा सा बोर्ड उसका हाँ पूरा डाला, और लोग उसके अंदर आ रहे जा रहे, थैली लेके, कपड़े की दुकान है या कोई और दुकान है, अरे देख रहा मेरी हाँ कुछ भी नहीं, मैं तो फेरी लगा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, दिल में उसके लिए मालूम नहीं कहीं से चोरी वोरी करके किया होगा, हाँ धोखेबाजी किया होगा, उसके दिल में बुरे जज्बात उसके लिए आते हैं, उसका दिल उसके लिए खैरख्वाह नहीं होता कि अल्लाह और बरकत दे इसको, लिखेगा लेकिन वाकई दिल में हाँ लिखने में तो आसानी होती है लेकिन दिल में थोड़ा वो कैफियत होती क्या नहीं मालूम नहीं कहाँ से लाया, बैंक से इंटरेस्ट लिया है, चोरी किया, धोखा दिया, क्या किया, पैसा किसी का हड़पा है, कहाँ से लाया मालूम नहीं है, दिल में उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। ये उम्मत को कमज़ोर करता है, ये उम्मत को क्या करता है, मुसलमान खैरख्वाह होता है, अद्दीन नसीहा, दीन खैरख्वाही भला चाहने का नाम है। तो सोशल मीडिया में जब आदमी एक साथ चीज़ें सबकी देखता है, अपने ही करीबी लोगों की तरक्की को देख के हसद के जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं, सब खुश है और मैं दुखी क्यों रहूं, तो उसके लिए नफरत पैदा होती है उन लोगों से जो खुश हैं, सब मुझको भूल गए और मैं खुशी मना रहे और मेरे साथ नहीं है वो लोग, तो महरूमी से क्या होता, हसद पैदा होता है, हसद पैदा होता है। आप देखिए बच्चे को, आप मिसाल के तौर पर दो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक बच्चे को बुलाइए, उसको बोलो मेरी तरफ से तुमको आइसक्रीम, और दूसरा बच्चा है रूम में, वो बच्चा उसको देखता, प्रेफरेंस की क्या रीज़न क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपको उसको दी मेरे को नहीं दिए, और ये क्या करता उसको, हम भी उस बच्चे से कुछ कम नहीं है, तो उसको दिखा के खाता, उसके पास जाके लेने की कोशिश करता, वो बोलता नहीं अब्बू देखो ये मेरे से ले रहा, बोलता अब्बू जेब में से दो निकाल के बेटा तू दो ले, तू ये देखता उसको थोड़ी देर पहले क्या था ये खुश था, उसको दिखा के खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको दो दिए तो अब क्या हो जाता, गाड़ी उल्टी हो जाती है, अब वो क्या करता, दोनों हाथ में दिखाता उसको, देख अब मेरे पास, वो खुश होता है दुखी होता, ये हाल है इंसान का, ये हाल है कि नहीं मिला तो शिकायत पैदा हो जाती है उसको, कि वो ये नहीं देखता है कि भाई तुझको एक तो मिला ना, तूने कमाया क्या इसको, ये फ्री में मिला हुआ है तो एक पे तुझको खुश होना चाहिए। नहीं, लेकिन उसको दो तो मुझको भी दो चाहिए। तूने कमाया थोड़ी है, पैसा थोड़ी दिया, किसके बदले तुझको मिल रहा है ऐसा। आप दो फकीर भी बाजू बाजू बैठे हुए हो, एक को पांच दो एक को दस दो, तो घूर के देखता पांच वाला, मेरे ऊपर हक थोड़ी ना है, मैं कितने भी दो मेरी मर्जी। लेकिन उसको शिकायत पैदा होती है, जिसको कम मिलता है उसको शिकायत, चाहे वो कोशिश के बगैर मिला हो, वो एज अ गिफ्ट हो, लेकिन इक्वल नहीं होने की वजह से शिकायत होती हो। अजीब मेंटालिटी इंसान की है। यही हाल होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है, उसको किसी न किसी तरह से उससे हसद, नाराज़गी और अल्लाह से शिकायत पैदा होती है, अल्लाह ने उसको ज़्यादा दिया, मुझको क्यों कर दिया। और बार बार आदमी देखता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू। लोग हमेशा भलाई के साथ जिएंगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से हसद, जलसी, हसद न करें, एनवी जिसको आप बोलते हैं, ये जब तक आपस में एक दूसरे से हसद न करें भलाई पर रहेंगे। लेकिन जब हसद करेंगे भलाई पर रहेंगे, बिगाड़ वहाँ से शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी में ख़राबी आएगी। हसद अपने दिल से निकालना ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया हसद की फैक्ट्री है, डिप्रेशन की फैक्ट्री हो, कि आपको उसका प्रोग्राम ही ऐसा है, एल्गोरिथम ऐसा है कि सबके अच्छे मोमेंट्स आपको, बल्कि पिछले भी ला के दिखाएगा वो। हाँ, दो साल पहले क्या हुआ था आपके दोस्तों का, तो आपको फिर जले पे नमक आपको पूरा बताएगा वो, कि वो कैसी तरक्की कर रहा है। और आपको लगेगा मैं जहाँ का वहाँ रह गया और मेरे दोस्त आगे निकल गए। तो ये जो सोशल मीडिया का जो तरीक़ेकार है काम करने का, वो आपको हसद करने वाला भी बनाता है। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है, बल्कि इसका नुकसान ईमान को होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यजतमियान फी क़ल्ब अब्द अल ईमान वल हसद। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हसद बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है। आपने फरमाया कि किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद एक साथ जमा नहीं हो सकते। हसद कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कि अल्लाह के नेक बंदे या आम बंदे मुसलमान, उनकी नेमतों को देख के ये सोचना इनको ना मिलता तो कितना अच्छा, और उसकी वजह से उससे नाराज़ होना, नफ़रत करना, ये आपके ईमान को डैमेज करता है। मुसलमान तो दूसरे की भलाई पर खुश होना चाहिए, उसको बरकत की दुआ देना चाहिए। अगर किसी को अच्छे हाल में आप देखें तो आप क्या बोलें उसको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बोलना चाहिए, बारकल्लाहु फीका। अगर उससे आप कह रहे हैं तो फीका कहेंगे, और अगर किसी और के सामने कह रहे हैं अल्लाह उसको बरकत दे, तो क्या बोलेंगे, फी ही, बारकल्लाहु फी ही। लेकिन अगर वो औरत हो तो, जिससे सहेली सहेली के बारे में कहे, तो क्या कहेंगे, बारकल्लाहु फी की। और अगर किसी और के सामने कहें, क्या कहेंगे, बारकल्लाहु फीहा। थोड़ा सीखना पड़ेगा इसको, हाँ, लेकिन दुआ भी तो कर सकते, अल्लाह बरकत दे उसको, मसला ख़त्म है ना, अल्लाह बरकतों से नवाजे। अपनी ज़ुबान में भी आप बोल दे, कोई मसला नहीं है। असल यह है कि आपके दिल में उसके लिए खैरखाही और बरकत की के जज्बात होने चाहिए, कि अल्लाह कम ना करे उसका, अल्लाह उसको क्या करे। क्योंकि जब आदमी दूसरे के लिए दुआ करता है, ये भी याद रखिए, तो फरिश्ता इसके लिए दुआ करता, अल्लाह तुझको भी दे ऐसे ही, दे जैसा उसको दिया तुझको भी दे, जैसे उसको दिया वैसे तुझको भी दे। तो ये फरिश्ता इसके लिए दुआ करता है, तो ये महरूम रहता नहीं। जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो इसको भी मिलता है। तो सोशल मीडिया आपसे आपकी खैरखाही को छीन लेता है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिविज्म में डाल देता हो, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर देता हो, अच्छा नहीं हो रहा, सबकी तरक्की हो रही, तो आपका आपका जहन नेगेटिव हो जाता है उसकी वजह से, ये नहीं होना चाहिए। नंबर चार, बेचैनी पैदा होना, और ये दो तरीके से पैदा होती है। एक, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद और दीन से दूर होने की वजह से, और दूसरे आलमी हालात, जो बुरे हालात हैं उनको देखने की वजह से। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ इन्न लहू मईशतन ज़ंका, ये जो मेरी याद से एराज करे, मेरी नसीहत से एराज करे, उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी है। चाहे वो अल्लाह का विक्र हो, अल्लाह की याद, या अल्लाह को याद दिलाने वाली किताब, अल्लाह की नसीहत कुरान, दोनों माना इसमें आते हैं। सिरे से अल्लाह को भूल जाए या अल्लाह की याद से जोड़ने वाली किताब, अल्लाह से जोड़ने वाली किताब कुरान, इसको नज़रअंदाज कर दे, इसको पसे पुश डाल दे, छोड़ दे इसको। वमन अअरद अन ज़िक्री, क्या अंजाम होता है उसका? फइन्न लहू मईशतन दनका, उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी है। इसीलिए आप देखें, जो भी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है उसको? हाँ, बैठो, आग बंद करो, समंदर के किनारे अपने आप को सोचो, या हैप्पी प्लेस में जाओ अपने, हाँ, बाग में, या कहाँ तुमको अच्छा लगता वो इमेजिन करो, तुम वहाँ है, ताकि और ब्रीद, सांस लो अच्छे से, तो तुमको क्या होगा? सुकून महसूस होगा। उतने में बीवी आवाज़ देती, जाके ज़रा दूध लेके आओ, नहीं होता सुकून। तो ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है। जब इंसान सुकून कब होता? जब इंसान अपने से कोई बड़ी ताकत जो हर चीज़ पर कादिर है, उसकी सिक्योरिटी में अपने आप को महसूस करता है। बच्चा जैसे माँ की गोद में जाता ना, तो एकदम चुपचाप सो जाता, और दाढ़ी वाले चचा उसको लिए, और बाप दाढ़ी वाला नहीं है, और डर के मरता बच्चा परेशान हो जाता, लेकिन माँ की गोद में जाता चुपचाप सो, क्योंकि सिक्योर महसूस करता है इंसान। तो पीस ऑफ माइंड का सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है। तो जब इंसान का अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है, अल्लाह मेरा मुहाफिज है, कैसे भी हालात आए अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह रिस्क देगा, अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह बड़ा रहीम है, कोई समझे ना समझे, अल्लाह को मालूम है मेरा हाल क्या है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मेरी तकलीफ़ अल्लाह जानता है। ये सारी चीज़ें जब इंसान अल्लाह से जुड़ता है, उसको अंदर से एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मैं उससे जुड़ गया जिसको बताना भी ज़रूरी नहीं है, वो खुद से जानता है और वह हल कर सकता है, वो मेरे हाल को भी जानता है और मेरे मसाइल के हल को भी जानता है, और न सिर्फ हल को जानता है बल्कि हल पर कादिर भी है। ये सुकून पैदा करता है। लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता, हम लोग मखलूक 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 मखलूक, लोग लोग लोग, दिखावा दिखावा दिखावा, चीज़ें बातें, दुनिया, इतना जुड़ जाते हैं हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। खाने पकाने, सफ़र, कपड़े, जूते, चप्पल, और दुनिया की जेब जीनत, जेवरात, पैसा और गाड़ियाँ, और दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें, सारी चीज़ें देख के आदमी का सुकून ख़राब हो जाता है। उससे मखलूक में मशगूलियत दिल के अंदर कसावत पैदा करती है, कसावत वहशत पैदा करती है। दिल मखलूक में वो इत्मीनान नहीं पा सकता है जो खालिक के साथ जुड़ने में पा सकता है। लेकिन आदमी क्या करता है, मखलूक कमज़ोर है, मखलूक धोखा भी देती है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मखलूक आजिज़ है, कुछ नहीं कर सकती है। खालिक बड़ा है, कुदरत वाला है, जो चाहे कर सकता है, रहीम है, करीम है, सखी, उसके पास सारे ख़जाने, उसके पास कोई चीज़ मुश्किल उसके लिए नहीं है। उससे जुड़ने पर ताकत आती है, हिम्मत आती है, हौसला बनता है, सुकून महसूस होता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब तक के बंदा अपने मालिक से, अपने रब से नहीं जुड़ता, पीस ऑफ माइंड मिलना मुश्किल है, नहीं मिलता उसको। तो इन चीज़ों में मोबाइल, ये वो सब, इसमें पड़ा है आदमी, और अल्लाह की याद जिक्र छोड़ा, सुबह शाम के जिक्र छुट्टी, हाँ, नमाज के बाद के जिक्र छुट्टी, नींद में से उठा तो मोबाइल, बैतुलखला से निकला तो मोबाइल, नमाज से सलाम फेरा तो मोबाइल, जनाजे में मोबाइल, इफ्तार के वक्त मोबाइल, हाँ, रास्ते में बस के इंतज़ार में मोबाइल, ट्रेन में सफ़र करते वक्त मोबाइल, बैतुलखला में मोबाइल, बैतुलखला में तक लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो भी वक्त मेरा यूटिलाइज होगा, बैठे बैठे क्या करूँ अंदर, टाइम लगता मुझको, हाँ, लोग हैं ऐसे, بیت الخلا میں بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں، اندر سے نوٹیفیکیشن آ رہا باہر کہ بھائی اندر کیا چل رہا ہے، بتائیے کیسے دلوں کو سکون ملے گا؟ اتنا ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے سلاٹ ہی نہیں ہے، اتنے اذکار ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کھانے کے بعد کھانے کا ذکر کیا، سواری میں سوار ہوئے سواری کا ذکر کیا، گھر سے نکلتے وقت ذکر کیا، ہاں نیند سے بیدار ہوئے ذکر کیا، سوتے وقت ذکر کیا، کہاں کب کریں گے؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کریں گے؟ یہی تو اذکار ہیں جو انسان کو اللہ کی حفاظت میں لاتے ہیں اور اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ تو کس سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ رب العالمین سے زیادہ کوئی بڑا کنیکشن ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی ہے جس سے کنیکٹ ہونا چاہیے؟ اس سے کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ان اذکار کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ کہاں ہے تو، کیا کر رہا تو؟ ہر وقت لائکس اور ہر وقت ہاں کمنٹس اور ہر وقت جواب اسی میں پڑا ہوا ہے، تو اذان کا جواب دیتا تو برابر، اس کا میسج آیا جواب دیا نا تو نے، وہ بندہ ہے، نہیں دیتا بعد میں دیتا کیا ہوتا، لیکن تو نے دیا، اب کیا اب دینا، وہ تو معلوم پڑے گا کتنے بجے آیا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آیا، اور برابر گرین ٹک بھی ہو گیا اب، ہاں اس کے پاس ہو گیا ہوگا، تجھ کو پہنچا میسج، اب تو کیا کرتا، جلدی سے جواب دیتا، ٹالنا نہیں، رہ گیا تو ناراض ہوگا۔ اور اذان کا جواب کتنے سال ہوئے تجھ کو دے کر، کتنے مہینے ہوئے، کتنے ہفتے ہو گئے، نہیں دیتا۔ نیند سے اٹھ کے کتنی بار دعا پڑھی تو نے، نیند سے جاگنے کی، پہلے تو موبائل ڈھونڈتا نیند سے اٹھنے کے بعد، فوراً آنکھیں بھی ٹھیک سے کھولی نہیں ہے، موبائل کھول دیتا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بے چینی نہیں آئے گی زندگی میں؟ اللہ کو چھوڑ کے سکون آئے گا زندگی میں؟ نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں پایا تو نے کچھ بھی نہیں پایا، اللہ کی یاد۔ تو بے چینی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہر وقت آدمی اس میں لگا رہتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت بے چینی پیدا کرتی۔ نمبر دو، بے چینی دوسرے اعتبار سے بھی آتی ہے، یہاں ایسا ہو رہا، غازہ میں ایسا ہو رہا، صومالیہ میں ایسا ہو رہا، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ہاں برما میں ایسا ہو رہا ہے، چائنا میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں رشیا میں ایسا ہو رہا ہے، آدمی ساری دنیا بھر کے حالات دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حقائق ہے، اور مسلمان کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے جتنے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا کو امن و امان سے بھر دے، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، خود ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان والا بنائے، فساد کو یہاں سے ختم کرے، سب کو نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ حالات دنیا کے جب آدمی دیکھتا ہے، صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا، میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوان بچوں کو، میں ایک بچے کو میرے پاس لایا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اتنا دیکھ لیا فلسطین کے حالات کو کہ اس کو ڈپریشن میں چلا گیا، مینٹل ڈس آرڈر اس کو ہو گیا، وہ جھیل نہیں پایا، کیونکہ عمر اس کی کم ہے، جھیل نہیں پایا، وہ ایک دم سکتے میں آ گیا تھا، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے رسپونڈ کروں میں، وہ ہم جھیل نہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں بچے قتل ہو رہے ہیں، بھائی وہ دکھ ہے مسلمانوں کے لیے، کیا ہر مسلمان اس کو جھیل سکتا ہے؟ آپ راستے سے جا رہے ٹرین میں سے یا گاڑی سے جا رہے آپ، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی مر کے پڑا ہے، آپ بتاؤ گے اپنی بیوی کو، دیکھ بیٹا دیکھ، وہ بیوی کو بولیں گے دیکھ بیوی دیکھ، اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ لوگ، ان کے لیے بہت ٹیررائزنگ ہے وہ چیز، ٹراما ان کو پیدا ہو جائے گا، اور ایک نہیں ہر دن دیکھ رہے وہ۔ آپ امت کے دکھ کو اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کرو کہ پوری امت دکھ میں مبتلا ہو جائے اور سلوشن کچھ نہ نکلے، تو یہ تو اسٹوپیڈیٹی ہے۔ یہ اگر حل نکل سکتا ہے اس کا کچھ، اور آپ بتا رہے ہو کسی کو، ایسے لوگوں کو جو حل کر سکتے ہیں اس کو، تب وہ سمجھداری ہے۔ تم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ امت میں ہے، اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایک دم پریشان ہو جائیں، اس طرح سے پریشان ہو جائیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنی زندگیوں میں دکھی جیے اور ان کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خبر کے ذریعے سے بھی تو کر سکتے ہیں نا اس کو، کہ بھائی فلاں علاقے میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سے دعا کرو اس کے لیے۔ نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، کم سن بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کمزور عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، بیمار بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے دیکھنے کے بعد میں ان کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں، کھانا ان کو کھایا نہیں جا رہا ہے، وہ جاب کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو غصہ آ رہا ہے، اور وہ غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں، تو مطلب حاصل کیا ہے اس کا؟ نئی امت کے حالات تو معلوم ہونا چاہیے، ہاں لیکن اس کے بعد کیا، کچھ تو ہوگا نا، کیا ہوگا بتا نا، بتا کیا ہوگا، वो कहीं जाकर किसी और से लड़ जाएगा, फसाद का जरिया बनेगा, गाड़ी चलाते चलाते उसकी फिक्र की वजह से, टेंशन की वजह से एक्सीडेंट उसका हो जाएगा, मशीन चलाते चलाते हाथ उसका चला जाएगा उसके अंदर, औरत किचन में करते करते गैस उसी तरह से खोल देगी, उसका ब्लास्ट हो जाएगा। तो करना क्या चाहता है? मुसलमानों को इस तरह से बिजी करके इसमें, और मुसलमानों की वाकई जिम्मेदारियों को वो नहीं पूरा कर पाएंगे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे? सबको बिठा के बताते थे, देखो बिलाल के साथ ऐसा हो रहा, फुलां के साथ ऐसा हो रहा, फुलां के साथ ऐसा हो रहा, सुनो, इसको सबको बताते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। तो हम ये जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो बहुत सारे और बाज़ोकात ऐसे लोग भी जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो बना के डालते हैं ताकि देखो डरो, और मुसलमान देख के घबराहट, और उसका बीपी डाउन होना, और उसको पैनिक होना, और उसको टेंशन होना, और उसको बेचैनी होना, रात को नींद नहीं आना, बच्चा बाहर गया तो मालूम नहीं इसका क्या होता, परेशान माँ बाप, क्या आदमी अपने आप को अमन अमान में महसूस ना करे, फिर आदमी हर एतबार से तैयार हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, ये चाहते आप? कितने लोग बहादुर हैं बताइए, हैं नहीं है? आदमी कमज़ोर है। तो आप इस तरह की चीज़ों को आम करके उसकी कमज़ोरी को घटा रहे कि बढ़ा रहे? बढ़ा रहे आप उसकी कमज़ोरी को। तो ये भी एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से बेचैनी होती है। ऐसे हालात में जबकि मुसलमान मजलूम हो, परेशान हो, उन हालात में मुसलमानों को हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। आप पूरी तारीख देखिए, अम्बिया की तारीख देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख देखिए, आपने बुरे हालात में मुसलमानों की हिम्मत तोड़ी नहीं, मुसलमानों की हिम्मत को बढ़ाया, अल्लाह से मायूस नहीं किया, अल्लाह से उम्मीद पैदा की। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, वला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफिरून, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता है, तो उम्मीद रखता है। ठीक है, बुरे हालात हैं, हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है, हसबुनल्लाहु निअमल वकील, हमारा रब है, अल्लाह जिंदा है, देख रहा है, सुन रहा है, मदद करने पर कादिर है, हम अल्लाह पे भरोसा रखेंगे। आज हमारे हालात बुरे हैं, कल को अल्लाह ताला हालात ऐसे लाएगा कि सब सही हो जाएगा। हम अपने बस में क्या है वो करेंगे, अकायद की इस्लाह करेंगे, लोगों के अखलाक की, इबादत की इस्लाह करेंगे, लोगों को बेहतर बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि लोग अगर बेहतर बनेंगे तो हालात भी बेहतर बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है, अल्लाह ताला किसी कौम के हाल को उस वक्त तक के नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद अपने हाल को बदलना दे। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को बदलता नहीं जब तक कि वो खुद अपने हाल को बदलना ले। अगर हम कौम के हालात दीनदारी के एतबार से अगर उनकी बदलते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला उनके हालात को बदल दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अल्लाह से मायूस ना होने दें। बुरे हालात आ रहे हैं, ठीक है, मुश्किलात आ रही हैं, हम लोग सर्वाइवर्स हैं। हम लोग कौन हैं? तातारी फिरका, हाँ, उसके हम लोगों को मुसलमान हजम कर गए, बाकी है वो गए, हम लोग गए, बल्कि वो लोग मुसलमान हो गए। चाइना हो, रशिया हो, दुनिया भर के कितने मसाइल मुसलमानों पे आए, मक्का हो या मदीना हो, मसाइल के ऊपर मसाइल आए, मुसलमान सरवाइव करेंगे, मुसलमान रहेंगे, जाने वाले नहीं किधर भी, हाँ मजबूत है, टिके रहेंगे, बचे रहेंगे, नहीं ख़त्म करते इनको, कितना भी करो उनको ख़त्म कर सकते, ये बचे रहेंगे, ये रहेंगे बाकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको रखेगा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। हदीस है, मुस्तद अहमद की रिवायत, और यही इसी मानों में सही मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी, कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ये अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, यानी मुस्तद अहमद में ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का इकरार करने वाला बाकी, क़यामत तक रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। हालात अच्छे बुरे आएंगे, कब नहीं थे बुरे हालात, सारे नबियों पर आए। तो हम हिम्मत के साथ में रहें, मुसलमानों को हौसला दें। बाज़ोकात क्या होता है, हम लोग
हालात बहुत बुरे हैं, हालात बुरे, डरा डरा के मार डालते उनको, मरने के पहले मार डालते उनको।
आदमी डर के परेशान, वो बाज़ औकात उसका डर उसको कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर कर देता दीन के मामले में। भाई हालात बुरे, हर आदमी हिम्मत वाला नहीं रहता, फिर वो क्या करता भाई अपने डिफेंस के लिए क्या करो, फिर बुतों की बात भी करता हो। जैसे माहौल में है ना भाई, हालात बहुत बुरे हैं, जैसे माहौल में है वैसे बन के रहो, फिर वो सब शिरकियात कुफरियात सब करना शुरू कर देता। आप ये चाहते, उसको हौसला दो, अपने दीन पर जमा रहे, कुछ नहीं होता, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, बुरे हालात आज हैं तो दीन पर डटा रहे, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। उसको हौसला दो, आप डराओ मत उसको, कहीं लड़ने को भेजो भी मत उसको। हाँ ये भी मत करो कि आप हमको निकलना पड़ेगा, हमको हाँ जुलूस निकालना पड़ेगा, हम शोर शराब, वो भी मत करो उसको। आप हौसला दो, तो जहाँ भी है अपने दीन पर जमा रहे, अल्लाह से दुआ कर, कोशिश करता रहे, अपनी जितनी जिम्मेदारियाँ उनको निभा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करने वाला है, तेरे घर वालों की हिफाजत करने वाला है। तो ये मिजाज हमारा बनाना ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया की वजह से आप देखिए, ज़्यादातर आप यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके आप देखेंगे, आपको जब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आदमी देखता है, बताइए वो खुश रहेगा? अच्छा वो कुछ करने लायक रहेगा? नहीं, उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहेगी, तो वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब आदमी कोई अच्छा काम बड़ा काम नहीं कर सकता है। क्या नबी की ज़िंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मसाइल नहीं थे? सहाबा दीन कहाँ से था? एक के बाद एक जंगे 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 जंगे, कितना क्या परेशानी उनके लिए, मक्का में परेशानी, मदीना में परेशानी। ये सारा दीन कब सीखे उन लोगों ने? इसके दौरान सीखे, दीन सीखना छोड़े नहीं। बाद लोग नादान किस्म के लोग थे, कब तक ये दर्स, कब तक ये सीखो सिखाओ, कुरान हदीस की बातें करते रहो, दर्स ये सब बंद करो, अभी बहुत दूसरे काम करने के, अपने को क्या काम करोगे तुम? अगर कौम में दीन कायम नहीं होगा, अगली नस्ल मुर्तद पैदा होगी। आज ये जो दुरूस हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह से, उसके रसूल से हम जो जोड़ रहे हैं, इबादत ज़िंदगी में बाकी रखने की फ़िक्र कर रहे हैं, इस्लामी अखलाक और इस्लामी अहकाम को ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये नहीं खाली तुम इस पर लगाओगे गवर्नमेंट बदलो और ये करो, इस पर लगा दोगे अगर आप, गवर्नमेंट बदल गई तो ये भी बदला हुआ होगा, इसके पास खुद दीन नहीं होगा। आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? दीन नहीं सीखे, ये इस्लाम के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए इसको कि वाकई दीन क्या है? अगर अच्छे हालात आए और दीन पे चलने का मौका रहा तो खुद दीन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं, पिछली नस्ल सिखाई नहीं हमको कुछ, तो कब सिखाएंगे फिर आप, कब सिखाएंगे? और आप बताइए इस्लाम की तारीख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम अहमद का दौर हो या और दौर हो, इब्ने तैमिया का दौर हो, कितने दौर आए, कितने फसाद और फितने और मसाइल मुसलमानों के थे, किसी एक दौर पे आप उंगली रख के बताइए कि उलमा ने दीन का सीखना सिखाना, दीन की हिफाजत और इशाअत को रोका था, कोई एक दौर बताओ आप, कब रोका? ये रुकेगा नहीं, रोकना नहीं चाहिए इसको कि भाई ये गैर ज़रूरी है, इसको छोड़ के दूसरा करो, नहीं। जो आदमी पूरी उम्मत का गम, बड़ी बड़ी बातें करता और उलमा की खिदमात और दुरूस और सीखने सिखाने को गलत बोलता, वो अपने खानों को बंद कर दिया, गोश्त खाना बंद किया उसने, उसने मीठा खाना बंद कर दिया, उसने दावतों में वलीमों में जाना बंद कर दिया, उसके ख़ानदान में निकाह रुक गए, उसने खुश होना हंसना छोड़ दिया, वो अपनी सारी इन्जॉयमेंट करता है और उलमा को गलत बोलता है, वो अपना सारा इन्जॉयमेंट बताइए, वो घूमने नहीं जाता पिकनिक पे, खाने पीने नहीं होते उसके, सब तो इन्जॉय कर रहा हो और बोलता मुसलमानों का दुख है हमको बहुत और उलमा को नहीं है। सोचने की चीज़ है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी की लज्जतें छोड़ता नहीं, चाय पीना छोड़ दिया उसने, नाश्ता छोड़ दिया उसने, रात में खाने के बाद पान खाना छोड़ दिया उसने, बताइए इतना अगर तुझको दुख है तो सारे तो अपनी लज्जतें उड़ा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनता ना तू, नए कपड़े नहीं पहनता तू, खरीदा नहीं इसके बाद कपड़े तूने, उम्मत का दुख है ना तुझको, क्या चीज़ है मतलब, तू तो सारी चीज़ें लज्जतें अपनी ले रहा है और उलमा को बुरा बोलता है जबकि वो दीन का दर्स दे रहे हैं। बोले साहब छोड़े और देखो दर्स में लग गए लोग, तू क्या कर रहा है बता, तो जॉब पे नहीं जाता बराबर, तनख्वाह बराबर समेट के लाता नहीं, उसमें से कितना भेजता है तू गरीबों को, तू बाहर नहीं भेजता है ठीक है, यहाँ किसको देता है गरीबों को, इधर के गरीबों के मसले नहीं है, इनको किसको देता है तू, तो अपने बाप को दे बाद में हमसे बात कर, अपने घर वालों को तू नहीं देता है, करीबी रिश्तेदारों को तू उनका नहीं सोचता है और तू फिलिस्तीन का सोच रहा है,
उनके हालात तू नहीं देख रहा है, जो मुसलमान तेरे करीब हैं, दूर वालों के बारे में बात करके तू हीरो बनना चाहता है, ग्लोरीफाई होना चाहता है, और करीब वालों के मसाइल में तेरा क्या योगदान है बता। ये लिटमस टेस्ट है ये, कि तू करीब वालों के लिए तू क्या है, उनके मसाइल हल करने की तेरे अंदर कितनी सलाहियत है, जबकि वो छोटे दर्जे के मसाइल है। तू बड़े मसाइल की बात कर रहा है, छोटे मसाइल तू कितने हल कर रहा है, ना वहां के हल कर पा रहा ना यहाँ के, तो तू कर क्या रहा है, तू अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है मीडिया में, ये बता रहा है कि मैं हमदर्द हूँ मुसलमानों का और उलमा नहीं है। जागे हम लोग, किसको धोखा दे रहा तू, किसको धोखा दे रहा है, अपने आप, अल्लाह को धोखा दे सकता तू नहीं, अल्लाह हकायक को जानता है। उलमा ये चाहते हैं कि लोग दीन पर जमे रहें, बुरे हालात में दीन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं जो हमको जमाए रखेगी, उनको बांध के रखें अल्लाह से, आखिरत से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, उस्वा से, इससे बांध के रखें, ये नजात का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाएं। मैं समझता हूँ ये बातें मुकम्मल होना, चूँकि तवील बात है, आज के दर्स में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हिस्सा हमने इसका मुकम्मल किया, और कम से कम जो इस कोर्स का असल मकसद था कि हम लोग सोशल मीडिया के बारे में मुहतात हो जाएं, अपने घरों का जायज़ा लें, अपनी ज़ात का जायज़ा लें, अपना रब से मामला सही करें, और फितनों से, फसाद से हम बचने वाले बने। मज़ीद बातें इंशाल्लाह आने वाले दर्स में हम देखेंगे, और उसको हम लोग ज़िम्मेदारान उसको जो है अपलोड भी करेंगे, तो आप लोग उसको सोशल मीडिया पे ही देख सकते हैं उसको। हाँ, उसको छोड़ने की दावत तो है नहीं, छोड़ने की दावत तो हमने नहीं दी है, लेकिन उसमें एहतियात की दावत है कि इसमें एहतियात हम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, जैसे आज जमा किया हम सबको अल्लाह ताला अर्श के साए में जमा करें, और क़ियामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हम सबको जमा करें। अकुलु हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम।